नमस्कार भारत, 13 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। चक्रवाती तूफान वर्दा की वजह से तमिलनाडु में जनजीवन अस्त व्यस्त, तूफान गुजरा लेकिन अभी छटे नहीं संकट के बादल।
पूरे दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, पूरे के पूरे मतलब ऊपर से छत का भी ऐसे वो गिर गया है।
बहुत बड़ा तूफान था, हवा तो बहुत तेज था, अभी तो बारिश चल रही है।
सरकारी लापरवाही के कारण रेन बसेरों में सर्दी से ठिठुर रहे हैं गरीब।
आजकल बहुत जास्ती ठंड है, ठंड में हम लोग के यहाँ कमर भी नहीं मिला है सर। यहाँ
कहा था कि नेवारी उबारी चटाई उटाई दर्री उरी बिछा देने, अभी कुछ भी नहीं बिछे हैं। अभी
पुराने नोटों से भारत ही नहीं अमेरिका में भी परेशान हैं लोग।
सलाह लेने के लिए आते हैं कि जी हमारे पास पैसे हैं, किसी के पास 60,000 है, किसी के पास 1,00,000 है,
और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात वर्दा की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर भारी पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं और बिजली सप्लाई बंद हो गई है। दोनों ही प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि तूफान का असर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है और 140 से इसकी रफ्तार अब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही तूफान आंध्र प्रदेश से होता हुआ कर्नाटक पहुँच सकता है। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार गृह मंत्री चौधरी निसार अली ने कहा है कि भारत अपनी नीतियों की वजह से खुद बटा हुआ है और उसे किसी दूसरे देश ने नहीं बांटा। गृह मंत्री चौधरी निसार अली ने ये बात भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से रविवार को आए एक बयान के जवाब में कही। भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान 10 टुकड़ों में बट जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को तोड़ने का भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। रूस ने कहा है कि ऐतिहासिक सीरियाई शहर पलमायरा में इस्लामिक स्टेट के दोबारा कब्जे के लिए अमरीका भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कुनशेनकोव के मुताबिक अमरीकी गठबंधन सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट पर जो हमलों को विराम दिया उसी की वजह से ऐसा हुआ। वो बोले,
रक्का में आईएस के ठिकानों पर अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने अपने हवाई हमले रोक दिए हैं, तो इससे इस्लामिक स्टेट को दोबारा संगठित होने का मौका मिल गया है, जिससे उन्होंने दोबारा पलमायरा पर कब्जा कर लिया। ये थे रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कुनशेनकोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरियाई सेना ने दावा किया है कि अलेप्पो शहर में 4 साल से चली आ रही लड़ाई अब आखिरी चरण में है। सेना ने कहा है कि शहर के एक बड़े इलाके से विद्रोहियों को खदेड़ दिया गया है। सीरियाई सरकारी टेलीविज़न ने तस्वीरें दिखाई कि आम नागरिक सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सलाहकार जेन इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि अलेप्पो में आम नागरिकों पर राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाएं ज्यादतियां कर रही हैं और इसके लिए सीरिया और रूस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अमेरिका ने भी कहा है कि रूस ने सीरिया में उनके युद्ध विराम के प्रस्ताव को नकार दिया है। अमेरिका ने दावा किया कि युद्धग्रस्त इलाकों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए उसने ये प्रस्ताव दिया था। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेश ने संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। गुटरेश 1 जनवरी 2017 को बान की मून की जगह लेंगे। एंटोनियो गुटरेश संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था के उच्चायुक्त रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति की घोषणा इसी साल अक्टूबर में न्यूयॉर्क में की गई। इस मौके पर मौजूदा महासचिव बान की मून ने कहा,
आई एम अ चाइल्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। After the Korean War,
मैं अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चा मानता हूँ। कोरियाई युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ही हमें पाला पोसा और ये एहसास दिलाया कि मुसीबत के वक्त में हम अकेले नहीं हैं। मेरी तरह हजारों लाखों कोरियाई नागरिकों की यही कहानी है। ये थे बान की मून के शब्द। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हैकिंग के आरोपों की जांच की मांग की है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकनल ने कहा है कि इस बात की वाकई जांच होनी चाहिए कि रूसी हैकिंग ने इन चुनावों को कितना प्रभावित किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपने आकलन में कहा था कि रूस की हैकिंग की वजह से ट्रंप को चुनाव में मदद मिली। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, न केवल रेडियो पर बल्कि bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में लोगों ने कल जो दृश्य देखे वो उन्हें वर्षों तक याद रहेंगे। घरों की छतें उड़ती हैं, विशाल वृक्ष जड़ों से उखड़ जाते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब तेज हवाएं चार पहियों वाली कारों के साथ साथ 10-12 टायर वाले ट्रक और टैंकरों को पलट कर रख दे तो तूफान कितना तेज था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तूफान की वजह से कम 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
वर्दा तूफान ने तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तबाही तो मचाई, लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे लगता है कि तबाही उतनी नहीं हुई जितनी आशंका थी। सरकारों ने बहुत सारे इंतजाम किए थे जिससे जान का नुकसान उतना नहीं हुआ जैसे सामान्य तौर पर आशंका रहती है। हालांकि हवा की तेज गति से बहुत सारे पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए और बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है। वर्दा तूफान कितना बड़ा था इसके बारे में चेन्नई के क्षेत्र तूफान चेतावनी केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर एस बालाचंद्रन कहते हैं,
बहुत बड़ा तूफान था। एक्चुअली क्या थे वो हम लोग थे, इसलिए वो आज दोपहर में 3 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में चेन्नई ट्रांसपोर्टर्स के जा रहे थे क्रॉस कर लिया। उसी टाइम तो हवा तो बहुत तेज था, 110 से 120 तक बीच में तेज हवा चलती था। अभी तो बारिश चल रही है, कई इलाकों में बारिश होगा, एक दो जगह में तो बहुत ठीक से बारिश होने की संभावना है।
इस तूफान का असर चेन्नई जैसे शहर पे ये था कि सारा दिन बिजली बंद कर दी गई थी और सरकार के आदेश पर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में छुट्टी रखी गई थी। राज्य सरकार ने लोगों को ये भी चेतावनी दी थी कि दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, लेकिन हवा इतनी जोर गति से बह रही थी कि लोग रात के 7 बजे भी बाहर नहीं निकल पाए। तेज हवा ने लोगों को बहुत परेशान किया। दोपहर में 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा धीमी होने पर भी शाम को 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। चेन्नई में रहने वाली पारुल सत्यन बताती हैं,
जोर से हवा आ रही है, पूरे दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, पूरे के पूरे मतलब ऊपर से छत का भी ऐसे वो गिर गया है, पूरा मेरा टेरेस गार्डन पूरा वॉश आउट हो गया है एंड इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो गया है कि मतलब कि नेचर को देख के लग रहा है कि नेचर के आगे हम नहीं है।
सरकार ने करीब 9,000 लोगों को राहत केंद्रों में रखा है। इस तूफान का असर सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा। इसके असर में कल रात को ही बेंगलुरु में भारी बारिश हुई और आज कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाकों में भी जोरों से बारिश होने की आशंका बढ़ रही है। डॉक्टर बालचंद्रन कहते हैं,
ये अभी तो वर्ष पश्चिम दिशा में चलता है, इसके जैसे में आपको तो रायलसीमा और साउथ इंडिया कर्नाटका जगह में अभी धीरे धीरे बारिश होने की संभावना है।
इस तूफान से जुड़ी 2 अजीब बातों की चर्चा हो रही है। पहला है इस तूफान का नाम। अरबी भाषा में वारदा का मतलब है गुलाब और प्रभावित लोगों को पता है कि इस तूफान में कुछ भी गुलाब जैसा नहीं था। दूसरी बात यह कि तमिलनाडु के लिए दिसंबर महीना बीते कुछ सालों में मुसीबत लाने वाला साबित हो रहा है। 12 साल पहले सुनामी दिसंबर में ही आई थी, पिछले साल बाढ़ दिसंबर में ही आई थी, पिछले सोमवार को जयललिता का निधन हुआ और कल सोमवार को तूफान वारदा यानी गुलाब की हवा की गति ने लोगों को परेशान कर दिया। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
ये तो हुई दक्षिण भारत की बात। उत्तर भारत में हर साल जब जब सर्दी आती है तब तब बात होती है सड़कों पर जिंदगी बिताने वाले गरीबों की और उनके लिए बनाए जाने वाले रैन बसेरों की। लेकिन क्या सरकारी दावों के बीच सर्दियों में गरीबों को रैन बसेरे वाकई नसीब होते हैं? पटना में हमारे सहयोगी मनीष शांडिल ने इसका जायजा लिया।
रात के 11 से ज्यादा बज चुके हैं और पटना का जो चीना कोठी का इलाका है वहां पर एक रैन बसेरे में हम हैं। हमारे साथ है कुछ लोग हैं, इनमें से सभी यहाँ रिक्शा चलाते हैं। जब मैं यहाँ आया तो कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। उनसे जानते हैं कि किन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, कैसे ठंड का मुकाबला कर रहे हैं, और जो प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उसकी क्या इस बार स्थिति है? जी क्या नाम हुआ आप, कहाँ से हैं आप?
राम प्रवेश पासवान जी, मुजफ्फरपुर जिले से। आजकल बहुत जास्ती ठंड है, ठंड में हम लोग के यहाँ कमर भी उम्र नहीं मिला है सर। यहाँ इनके पीछे साल में वो मिले थे कमर उम्र, रेनबसेरे में इनके अभी कुछ नहीं मिल रहा है।
हमारा नाम मनोज जी, ठंड की मिसल से बहुत अफसोस में जाइए, बहुत ठंडे लगती हैं अभी सरकार। हम लोग कम्बल तमर कुछ भी नहीं मिले, अपना अपना चद्दर लेके अपना अपना सोते हैं।
आप इस रन बसरे में पिछले कितने दिनों से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं?
यहाँ ढेर दिन से हैं सर, लड़के हैं 20 साल से हम लोग हैं।
आप 20 साल से हैं, 20 सालों का जो अनुभव है उसको जरा याद करके बताइए कि इस मौसम में प्रशासन पहले क्या इंतजाम करता था और इस बार उसने कौन कौन से इंतजाम नहीं किए हैं?
इस बार में तो अभी कोई स्टाम अभी नहीं मिल चुका है। पहले कम्बल तम्बल सब मिल जाते थे, अभी कम्बल अम्बल नहीं मिले हुए हैं।
कम्बल के अलावा और क्या क्या व्यवस्था होती थी ठंड के दिन में?
व्यवस्था होती थी कम्बल वाला कि पहले आदमी के कहा था कि नेवारी उवारी चटाई उटाई दर्री उरी बिछ जाते थे, अभी कुछ भी नहीं बिछे हैं अभी।
बाबा आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप?
बाल इलाका का, पटना जिला का।
क्या उम्र होगी आपकी अभी?
हमको 70-75 हो रहा है।
इस साल में इस उम्र में भी आप रिक्शा चलाते हैं?
हम चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं।
जो इस साल के इंतजाम हैं वो पिछले साल के मुकाबले इंतजामों में कहाँ कहाँ कमी देख रहे हैं आप?
कमी तो सब कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमें 2 साल से तो कुछ नहीं मिलता,
बिजली का वह भी कुछ सुविधा नहीं है। वो तो लाइन हम लोगों ने तो खींचे हुए हैं, सब चंदा बिजाड़ करके तो अपना तार लगा के बोल लगाए हुए, शौचालय नहीं बना है अभी, बनवो गया तो चालू शौचालय है नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जो बेघर लोग हैं शहरों में उनके लिए जो प्रशासन है वो शेल्टर्स होम में हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसकी निगरानी के लिए उसने आयुक्त नियुक्त किए हैं और आयुक्त की मदद के लिए हर राज्य में सलाहकार हैं, ऐसे ही सलाहकार बिहार में रुपेश हैं। रुपेश जी आज आप मुआयना करने के लिए निकले हैं तो क्या स्थिति देख रहे हैं?
कि यहाँ अगर ढंग से कोई शेल्टर कहा जाए तो वो शेल्टर है नहीं, क्योंकि जो पहले से यात्री शेड रहा है उसी को चारों तरफ से घेर करके ये लोगों के लिए रैन बसेरा बना दिया गया है। और यहाँ सोने के लायक स्थिति में नहीं है ज़मीन, रहने के साथ साथ इनके फूड सिक्योरिटी का और बेसिक जो सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ होनी चाहिए। और तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो देख रहा हूं वो इस ठंड के मौसम में कोई व्यवस्था सरकार अभी तक नहीं कर पाई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकारी लापरवाही की वजह से रैन बसेरों में सर्दी से ठिठुर रहे हैं गरीब। बात हो रही थी पटना की।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
तारीख 13 दिसंबर दिन मंगलवार, भारत में इस समय वक्त हुआ है 6:43 और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे आप लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार में क्या है खास जो उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सरबरा यानी मुखिया बनाया गया है, और जगमग शहर न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीयों पर क्या बीत रही है 1500 के पुराने नोट बंद होने के बाद। लेकिन पहले सुनते हैं दिल्ली के अखबारों में क्या छपा है आज। प्रभात पांडे अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, दिल्ली से छपने वाले अखबारों की बात से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में छपी खबर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वन चाइना पॉलिसी पर जो बयान दिया था उस पर चीन और सिंगापुर से छपने वाले कई अखबारों ने अपना विश्लेषण छापा है। सिंगापुर से छपने वाले मुख्य अखबार स्ट्रेट्स टाइम्स ने ट्रंप के बयान पर एक आकलन छापा है जिसमें कहा गया है कि ताइवान को ट्रंप के नज़रिए और उनके बयानों से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी पर सवाल उठाकर ताइवान की और जो ताइवान की राष्ट्रपति से उन्होंने जो फ़ोन पर बात की थी, ये सारे कदम उठाकर वो चीन को बस नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों की बात करें तो जो चक्रवाती तूफान वारदा है उससे जुड़ी हुई खबरें तमाम अखबारों में छपी हुई हैं। द हिंदू में मैं देख पा रहा हूं एक बहुत ही हैरतअंगेज तस्वीर छपी हुई है, आप भी देख रहे होंगे, जिसमें एक ट्रक एक ऑटो के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ है, तो इससे तूफान की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि त्रिवेंद्रम में
इंटरनेशनल केरल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल के दौरान राष्ट्रगान बजने पर 12 लोग खड़े नहीं हुए थे, जिससे उनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी और 8 लोग खड़े नहीं हुए थे तो उनको पीटे जाने की बात सामने आई कि लोगों ने उनको पीटा, वो राष्ट्रगान में खड़े नहीं हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिलचस्प खबर ये छपी है कि भारतीय जो होते हैं वो छुट्टियां काफ़ी कम लेते हैं, उनको उनके दफ्तरों में जितनी छुट्टियां इंटाइटल की जाती हैं वो उससे भी कम लेते हैं काम के बोझ के तले। आप कितनी छुट्टियां लेते हैं संदीप?
यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था।
मैं भी काफ़ी कम छुट्टियां ले पाता हूं। जनसत्ता में खबर छपी है कि कहीं सोने के बिस्किट मिले तो कहीं नए नोट, नोटबंदी के बाद जो भी हो रहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण दिया है, वो भी जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर उसे अपनी सुर्खी बनाया है, कि निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द करने संबंधी जो भी खबरें मीडिया में चल रही हैं वो गलत हैं और बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। संदीप, आपको याद होगा कि अमान्य नोटों को बदलने और नए नोट जारी किए जाने को लेकर एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर प्रमुखता से छापी है, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि चीन ने एक बार फिर संकेत दिया है कि वो पाकिस्तान स्थित चरमपंथी मौलाना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में अपना रुख नहीं बदलेगा। मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के भारतीय प्रयासों को चीन संयुक्त राष्ट्र में पहले भी वीटो कर चुका है और अखबार के मुताबिक चीन ने संकेत दिया कि इस महीने जब दोबारा ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठेगा तो वो फिर से भारतीय प्रस्ताव को वीटो कर सकता है। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने जो 3-0 से सीरीज जीती है उसका फोटो भी हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, दूसरे कई अखबारों ने भी छापा है। द स्टेट्समैन अखबार ने खबर छापी है कि पुर्तगाल और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बैलन डोर अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार साल के बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी को फीफा देती है। इस रेस में उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पछाड़ दिया है।
एक दिग्गज खिलाड़ी ने दूसरे दिग्गज खिलाड़ी को पछाड़ा।
दोनों ही इस रेस में बने हुए थे। इसके अलावा अमर उजाला की खबर के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट में एक बेबी डायपर में छिपाकर रखे गए 16 किलो सोने के बिस्किट मिले हैं और इस तरह की तमाम खबरें लगातार आती जा रही हैं। तो संदीप, मैं देख पा रहा हूं कि इसी तरह की खबरें छपी हुई हैं। जी,
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की विस्तार से समीक्षा के लिए। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को खुफिया एजेंसी ISI का प्रमुख बनाया गया है। नवीद मुख्तार में क्या है खास जो उन्हें ISI की कमान सौंपी गई? हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने इस्लामाबाद में BBC उर्दू संवाददाता रियाज सुहेल से इसका जवाब जानना चाहा।
पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची था, वहाँ पर एक ऑपरेशन जारी था जिसे टारगेटेड ऑपरेशन कहा जाता है। वो वहाँ पर क्रिमिनल्स के खिलाफ और जो पॉलिटिकल किलिंग्स होती थी या जो दीगर मामला की किलिंग्स होती थी, भत्ताखोरी थी, अगवा बराए तावान की वारदातें थी, उसमें बड़े पैमाने पे कमी हुई है। और ये जब कुछ सारा ऑपरेशन जारी था तो उसने एक अहम मोड़ अख्तियार किया, तो उस वक्त यहाँ पर नवीद मुख्तार कोर कमांडर थे और मेजर जनरल बिलाल अकबर DG रेंजर्स थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इन दोनों की पार्टनरशिप के दौरान ये कराची में अहम कामयाबी मिली और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रेस्टोर हुई। मौजूदा वक्त अगर देखा जाए कि इससे पहले भी जो DG रेंजर्स थे रिजवान अख्तर, उन्हें भी कराची से ही प्रमोट करके DG ISI बनाया गया था। इसी तरह इस मरतबा फिर कराची को ही जो पैमाना है कामयाबी का और कामरानी का, उसको पैमाना बनाकर उन्हें DG ISI बनाया गया है। इससे पहले भी वो ISI के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, जिसके बाद उन्हें कोर कमांडर कराची तैनात किया गया था। तो यहाँ पर बाज़ हल्कों में यही बात है कि कराची ऑपरेशन में जो कामयाबी है उसके रिवार्ड के तौर पर इन दोनों शख्सियात को अहम पोजीशन पर तैनात किया गया है, मुकर्रर किया गया है, ताकि जो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कराची की सतह पे थी वो अब वो ऊपर सतह पे भी जारी रहेगी। इससे एक लेसन ये भी मिल रहा है कि पाकिस्तान का जो इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला था वो इसी तरह से उनकी जो प्रायोरिटी रहेगा। यही वजह है कि उन दोनों की तैनाती साथ में हुई है।
जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं उन्होंने इतनी जल्दी ये फैसला किया, क्या वजह थी? इसके पहले जो प्रमुख थे ISI के, क्या उनके काम से वो बहुत खुश नहीं थे?
जी, जो उनके हिस्से में यकीनन कामयाबियां होंगी जिस तरीके से वो कराची से प्रमोट करके वहाँ पे मुकर्रर किए गए थे, मगर मौजूदा जो चीफ है जाहिर है कि वो अपनी टीम बनाना चाह रहे होंगे, अपने तौर पर वो चीजों को देखना चाह रहे होंगे, तो उनको ये ज्यादा सूट कर रहे होंगे। इसी वजह से ये इनकी सामने आई हैं। दूसरा जो अफगानिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में भी उनका जो विजन है, आपने देखा होगा रायल शरीफ के दौरे जब थे आर्मी चीफ तो काफी बॉर्डर पर सिक्योरिटी कशीदगी की सूरतयाल थी, मगर मौजूदा वक्त उसमें कमी आई है। और साथ में ये भी, जब नवीद मुख्तार वार कॉलेज ऑफ अमेरिका में जेर तालीम थे तो उन्होंने इस हवाले से एक खास तहकीकी पेपर भी लिखा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया था कि जो अफगानिस्तान में एक मजीद महाज को ना खोला जाए क्योंकि वहां पे इंडिया अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार कर सकता है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है क्योंकि फिर पाकिस्तान को भी एग्रेसिवली उसके सामना करना पड़ेगा।
तो आपको क्या लगता है कि इनके आने के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर किस तरह का असर पड़ने की उम्मीद देख रहे हैं आप?
जी सूरतयाल अब जैसा कि मामूल की तरफ आ गई है तो बज़ाहिर तो इसी तरीके से लग रहा है कि पॉलिटिकल जो इकदाम हैं वो दोबारा से बहाल होंगे और दोबारा स्टेट टू स्टेट रब्ता किया जाएगा।
पाकिस्तान में ISI के नए मुखिया नवीद मुख्तार भारत के बारे में क्या राय रखते हैं, bbchindi.com पर आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। और अब बात अमरीका की, जहाँ न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले भारतीय पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान हैं। उन्हें भी अपने 1500 के पुराने नोट जो बदलना है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को नोटबंदी के कारण भले ही घंटों लाइनों में न लगना पड़ रहा हो, मगर बहुत से लोग बैंकों के चक्कर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। अमरीका में रहने वाले भारतीय मूल के बहुत से लोग भारत का चक्कर अक्सर लगाते रहते हैं और अंदाज़ा ये है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास भारतीय रुपए की शक्ल में हज़ारों और लाखों तक की रकम भी मौजूद है, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि अब नोटबंदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों को कहाँ बदलने जाएं। न्यूयॉर्क के पकीप्सी इलाके में रहने वाले भारतीय मूल के हरविंदर सिंह मैनहट्टन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अपनी माँ की 500 और 1000 की नोटें बदलवाने आए थे। उनकी माँ भारत से उनसे मिलने आई हुई थी, लेकिन वो बैंक से मायूस होकर लौटे। हरविंदर सिंह बताते हैं,
मेरी मदर टूरिस्ट वीजा पे इधर आई हुई हैं, उनके पास थोड़ी इंडियन करेंसी थी गुजारे लायक, तो वो अब 6 महीने बाद जाएंगे इंडिया, तब तक तो सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए मैं इधर आया था ढूंढ के SBI ब्रांच, बट दे सेड कि हम चेंज नहीं करते, मोहल्ले तो वेस्ट हैं, बेकार हैं, ज़्यादा नहीं 8-10 हज़ार रुपये है। इन्होंने बोला किसी के हाथ भिजवा दो, वो लोग भी खुद परेशान हैं जिनके हाथ भिजवाएंगे तो वो कैसे चेंज कराएंगे। मैं 2 घंटे की ड्राइव करके इधर ढूंढ के मैं बैंक आया तो इन्होंने साफ मना कर दिया, कोई हेल्प लेस है, कुछ नहीं कर सकते।
हरविंदर बताते हैं कि उनके बहुत से दोस्तों को भी नोट बदलवाने हैं, लेकिन अमरीका में इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। अमेरिका में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे भारतीय बैंकों की शाखाएं भारतीय रुपए लेने या देने से साफ इनकार करती हैं और नोटबंदी के सिलसिले में बैंकों में नोटिस भी लगा दिए गए हैं कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को सिर्फ भारत में ही बदला जा सकता है। न्यूयॉर्क में रहने वाले एक भारतीय मूल के वकील आनंद आहूजा के पास कई लोग नोटबंदी के कारण उपजी परेशानी का हल भी ढूंढने आ रहे हैं। आनंद आहूजा कहते हैं,
सलाह लेने के लिए आते हैं कि जी हमारे पास पैसे हैं, किसी के पास 60,000 हैं, किसी के पास 1,00,000 है, ये हमारे पास हैं, उसका कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ सलाह दीजिए। तो मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं आया कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स हैं उनके यहाँ पे कोई उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इंडियन करेंसी वो लेके कैसे करना है उनको, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं वो बोल रहे हैं कि हम डेडलाइन जो है उसमें पहले इंडिया चक्कर लगाते हैं और वहाँ ले जाते हैं, कॉन्सुलेट में भी जाते हैं, तो उनका यही रहता है कि जी हमें कोई वहाँ पे कोई सेटिस्फैक्ट्री इस बात का कोई जवाब नहीं मिला है, तो परेशानी तो है लोगों को हो रही।
नोटबंदी के कारण उपजी समस्या के बारे में विभिन्न अमरीकी शहरों में स्थित भारतीय काउंसिल आवास से भी लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। अभी भारत में 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए समय बाकी है और इसीलिए कुछ लोग भारत जाने वाले दोस्तों और संबंधियों को नोटें भारत में बदलने के लिए दे रहे हैं। न्यूजर्सी में रहने वाले भारतीय मूल के अमरीकी जाफर मोहम्मद दिसंबर में ही भारत जा रहे हैं और उनके कई दोस्त 500 और 1000 की नोटों में हजारों रुपए भारत में बदलने के लिए दे गए हैं। जाफर मोहम्मद कहते हैं,
मिला हूँ दोस्तों से, काफी लोगों ने मुझे पैसे दिए अपने, आई हैव कलेक्टेड अबाउट मेबी 1,00,000 रुपीज फ्रॉम डिफरेंट पीपल, तो अभी उनके रिश्तेदारों को लेकर देना है और कुछ और लोग प्रॉमिस किए हैं कि वो अभी नोट मुझे लाके देंगे अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, सो दैट वो चेंज करवा ले।
500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द किए हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक विदेशों में भारतीय बैंकों की ब्रांचों को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं जिससे वो भारतीय मूल के लोगों और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नोटों को बदलने में कोई मदद कर सकें। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
अभी हम चलेंगे खेल के मैदान में, लेकिन पहले क्या आपका दिल नौकरी से उबने लगा है? क्यों? क्योंकि सपने संजोना इंसान की फितरत है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ख्वाब देखना भी ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम हकीकत के धरातल से दूर होते जाते हैं, ख्वाबों की दुनिया में उड़ते जाते हैं, और जब सामना होता है हकीकत की सख्त ज़मीन से तो औंधे मुँह गिरने का खतरा पैदा हो जाता है, और ऐसे में आपका दिल नौकरी से उबने लगता है। ये हम नहीं कहते, ये बाकायदा एक अध्ययन में निकल कर सामने आया है। क्या है ये अध्ययन और क्या है इसके पीछे की हकीकत, पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब हम आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं वैभव दीवान। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने बेंगलुरु में चल रही IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। ये पंकज अडवाणी का 16वां खिताब है। फाइनल मुकाबले में पंकज के सामने सिंगापुरी खिलाड़ी पीटर गिलक्रिस्ट थे। पिछली बार ये खिताब पीटर ने ही जीता था, पर इस बार फाइनल में वो अपना जौहर दिखा ना पाए और पंकज के सामने बेस्ट ऑफ 11 के सेट में 6-3 से हार गए। जीत के बाद पंकज अडवाणी से मैंने खास बात की।
बहुत ही खुश हूँ। इस समय घर पे जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जीतना ही है, और जब आप टूर्नामेंट के फेवरेट हो। लेकिन कंपटीशन और स्पोर्ट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स भी काउंट करते हैं, जैसे टेबल कंडीशंस, जैसे आपका जो फॉर्म है। और मैं अभी तो दोहा से आया हूँ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के बाद, इमीडिएटली मुझे बिलियर्ड एडजस्ट करना पड़ा स्नूकर से बिलियर्ड, तो बहुत ही स्ट्रगल था, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू विन।
बिलियर्ड से चलते हैं क्रिकेट की ओर, जहां इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान एलिस्टर कुक ने कैप्टेंसी छोड़ने के संकेत दिए हैं। भारत इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच को एक पारी और 36 रनों से हारने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिस्टर कुक ने कहा,
मुझे लगता है कि जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए तैयार हैं, जब तक आप किसी को पानी में फेंकोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो डूबेगा या तैरेगा। वो कप्तानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, टीम में सभी उनको सम्मान देते हैं। माना कि उनको अभी कप्तानी का अनुभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो एक अच्छे कप्तान साबित नहीं होंगे।
एलिस्टर कुक इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान 2012 से हैं, और भारत में मिली इस सीरीज हार के बाद से उनके मन में कैप्टेंसी से हटने के विचार चल रहे हैं। जो रूट पर कुक ने भरोसा जताया है, हालांकि अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है। भारत इंग्लैंड की सीरीज में अब बस बाकी है एक आखिरी टेस्ट मैच, जो खेला जाएगा 16 दिसंबर से चेन्नई में। इस श्रृंखला में भारत है 3-0 से आगे। वहीं दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डेविलियर्स ने टेस्ट टीम की कप्तानी फैफ डुप्लेसी को सौंप दी है। एबी डेविलियर्स की एल्बो यानी कोहनी की सर्जरी हुई है, और इसलिए वो श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। और कल अपने जन्मदिन पर चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद लंदन में चल रही लंदन चेस क्लासिक टूर्नामेंट के तीसरे दौर में अमरीकी खिलाड़ी हिकारु नाकामुरा से हार गए।
खेल के मैदान से हम वापस आ गए हैं अपने स्टूडियो में। कार्यक्रम के समापन का वक्त हो रहा है, भारत में बजने वाले हैं 7:00। कार्यक्रम का समापन करें उससे पहले विश्व समाचार एक बार फिर प्रभात पांडे से।
बीबीसी समाचार। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात वर्दा की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं और बिजली सप्लाई बंद हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही तूफान आंध्र प्रदेश से होता हुआ कर्नाटक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार गृह मंत्री चौधरी निसार अली ने कहा है कि भारत अपनी नीतियों की वजह से खुद बटा हुआ है और उसे किसी दूसरे देश ने नहीं बांटा। गृह मंत्री चौधरी निसार अली ने ये बात भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से रविवार को आए एक बयान के जवाब में कही गई। रूस ने कहा है कि ऐतिहासिक सीरियाई शहर पलमायरा में इस्लामिक स्टेट के दोबारा कब्जे के लिए अमेरिका भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि उसने रक्का में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले रोक दिए हैं। सीरियाई सेना ने दावा किया है कि अलेप्पो शहर में 4 साल से चली आ रही लड़ाई अब आखिरी चरण में है और शहर के एक बड़े इलाके से विद्रोहियों को खदेड़ दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सलाहकार जेन इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि अलेप्पो के आम नागरिकों पर राष्ट्रपति असद की सेनाएं ज्यादतियां कर रही हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेश ने संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। अमरीका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हैकिंग के आरोपों की जांच की मांग की है। अमरीकी सीनेट ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि रूसी हैकिंग ने इन चुनावों को कितना प्रभावित किया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।